ज्ञान दिया जो मैं कौन इसका नाम है आज तो जो अपने को ज्ञान लेगा जो मैं जो अजर अमर उसको कोई नहीं जीत सकता उसे कोई पराजित नहीं कर सकता वो विश्व को विजय कर हो जाता है। उसको अवश्य तुम्हार विद्या इत्यादि कभी भी संज्ञान का और वो विश्व को कम मैंने सोचा कि गोचर ले जब भी आत्मा के धन उसको तो तुम्हें देवताओं को जल्दी से प्राप्त कर दूंगा इसलिए आत्मा को वो कैसा है सब समय एक रास्ता होता है एक रस में कैसा रहता है वैसे उसमें अदल बदल परिवर्तन ये सब नहीं उसमें कोई भी विचार नहीं सब समय एक समान ही होता है कभी रूपांतर में कुछ जन्म और मृत्यु भी नहीं है ठीक है कुछ होने के साथ सीखे जाए ब्रह्मा की ज्ञान भगवत की सृष्टि करने वाले हैं तो प्रजापति ब्रह्मा के पास इंद्र ने सुनाया नारद जी ने बताया ठीक है इंद्र ने सुना नारद जी आत्मा अजर अमर है जो आत्मा तत्व को ध्यान लेगा तब उसका कहीं भी पराजय नहीं होगा वो सब विश्व को जीत लेगा उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगी उसका जन्म नहीं होगा मरण नहीं होगा और वो सब समय एक समान रहेगा आनंद में उनको जानना चाहिए वो भी पहले ब्रह्मा के पास में जमें खूब कोशिश नहीं होता न उन्होंने उससे बातचीत किया था न दोनों ये चाहते थे कि हम उसको भी चाहे हम उसको भी किंतु ब्रह्मा के पास जाओ पच्चीस वर्ष तक ब्रह्म सज्जा रहता हमारे आश्रम में सेवा गैया है उनको देखो तुम्हें और जो सेवा करना है वो सब झाड़ू से लेकर के सब काम करना
ब्रह्मा जी का भी ऐसा है
तो पच्चीस वर्ष के बाद हमें चले ये लोग छुट्टे चले गए और वहाँ पर पूरा करने लगे पच्चीस वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य को बकर सब समय भगवत संपल जैसा उनका नियम है ब्रह्मचर्य के तरफ पालन करके सेवा करके आया देखो पच्चीस वर्ष तक तुम लोगों ने दाढ़ी और ये फिर नख तक नहीं कटवाए तुमने ब्रह्मचारी लोगों का शरीर अभी तरफ दाढ़ी काटते और अच्छे अच्छे अलंकारों में विभूति संपत्ति हमारी चली गई अच्छे कपड़े पहने अलंकार पहने खुद तक घर कर दिया अच्छा किया देखो ये दर्पण लो दर्पण देख रहे हो मेरी आत्मा ये तुम अभी जैसा घर करते आए हो यही आत्मा है इसको ध्यान लेने से ही अगर आदमी हो जाएगा तो रोग नहीं आएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, धन नहीं होगा, सब कुछ आएगा। उनकी बात ध्यान कर निरंतर पर चला गया। ताकि ये मनुष्य शरीर ही आत्मा है, उसकी सेवा करने से ही, उसकी पुत्री करने से, उसको खिलाने पिलाने और ये सब करने से आदमी भजन जैसा हो जाएगा और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अजम से वो आकर के सब जगह नहीं सिखा और वह संतुष्ट हो उनको धीरे धीरे रास्ते में जा रहे हैं। सबसे आत्मा को एक समान रहता है, उसका जन्म मृत्यु नहीं, तो ये शरीर को हमको देख रहा है। ये तो ये मरना होगा, अब जन्म है इसका, तो जन्म हुआ और ये जो दाढ़ी जो हमने कमाई और जो साफ चेहरा निकल आया तो फिर दो दिन के बाद आ जाएगा और ये कपड़े नए हो जाएंगे, अलंकार भी पुराने पड़ जाएंगे, तो चेहरा भी वैसा हो जाएगा, बुरा होने पर चेहरा नहीं, भूख भी पड़ जाएगी और सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन और इसको रोज ही रहेंगे। कितना जन्म और मृत्यु होता है, किसी तरह की चिंताएँ आती हैं, कितना धूप और कष्ट आता है, इस तरीके तो मैं जानता हूँ, किंतु इसे कुछ चला नहीं, ये तो अजर हमारा है नहीं।
नारायण जी की परिभाषा से टैली नहीं करते,
भाई दूसरे कार्य में तुम क्यों लौटे, हमारे बात तो विश्वास नहीं, विश्वास तो है उनके साथ में समझ नहीं कर रहा हूँ, विश्वास हम आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, किंतु मैं समझ नहीं, मैंने ये विचार किया जैसे ये तो शरीर रोज ही रूपांतरित होता है, इसकी आयु कम होती जाती है, इसमें रोग है, सुख है, तरह तरह के दुख है, कष्ट है, परिवर्तन है, ध्वंस है, किया जाना तो है नहीं, इसमें तो शांति और आनंद है, कभी आती है झलक की अकेली है, ठीक है, तुम हमारी बातों पर पिछले 25 वर्ष और बढ़े चित्त को स्थिर कर, हमारी बात समझने लायक नहीं होता और वैसे ही 25 वर्ष और रहे, 25 वर्ष के बाद देखो ये मन में जो चिंता आती है, स्वप्न होता है, जो स्वप्न देखता है किंतु मरता नहीं है, स्वप्न में जो आदमी चिंतन करता है कहाँ कहाँ की सैर करता है और क्षण मात्र में कहाँ से कहाँ चला गया, वही जो सपने में जो पुरुष दिखता है, जो मन है वो ऐसा इसको ज्ञान लेने से, मन की गति, मन की ये सफाने से वो सब की परास्त करते हैं और अजर अमर हो जाएगा। इस समय तो मैं समझ में नहीं आया क्योंकि वो रास्ते में सिर्फ क्या करते हैं, ये मन को तो दिन में 13 दशा होती है और शरीर मर जाने के बाद में मन भी चला जाता है और सब समय परिवर्तन और जन्म के साथ में उसका जन्म और मरने के समान चला जाता है। तो इसलिए तो मन को तो स्वप्न होता है या ये सब होता है, तो मैं देखता हूँ किसी तरह के स्वप्न में किसी ने की काट लिया और मैं देख करके रो रहा हूँ, यदि सीढ़ी कर दिया तो रोने वाला कभी कुछ कभी कुछ तरह तरह के स्वप्न देखते तो ये स्वप्न वाला पुरुष और जो मन है ये तो स्वप्न अजर मन। अरे लौट आया, मैं आपकी बात से भी नहीं समझा, विचार किया रास्ते में, जो शरीर जैसे ध्वंसशील है, परिवर्तनशील है, मन में भी तो तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं जाती हैं, शरीर को देख मन ही तो होता है, शरीर को तो होता नहीं है, इसलिए मन में तो वो परिवर्तन और ध्वंसशील और ये आत्मा तो मुख्य आनंदमय है, एक रस है, कभी इसमें दुख दुख सब नहीं है, ये कैसे ये इसमें तो ऐसा देता है, कभी नींद कटता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ कोई गाली दिया तो वो मन नहीं लगता है, इसलिए मन को आता है। जगत के जितने बुद्धिमान लोग हैं वो मन को ही मानते हैं और मूर्ख लोग मानते हैं सभी नहीं मानते, ब्रह्मा जी ने कहा
वो जितने ऐसा कहते हैं मेरे सभी मूर्ख हैं। वो जो बुद्धिमान जगत के हैं वही मन पर ही जगत को टिकाए रखते हैं, वो सब पच्चीस वर्ष का और ब्रह्मचर्य पच्चीस वर्ष का करके अच्छी तरह से मन को शांत कर दे। पच्चीस वर्ष के बाद जब सो जाते हैं तो गंभीर नींद आ जाती है, उस समय में जो सो जाता है जो पुरुष, यह है वह है नहीं है और सुख और दुख कुछ भी नहीं होता, एक रस रहता है। सुषुप्ति वाले पुरुष को कोई यदि जान ले तो वही आत्मा है, वो अजर अमर नित्य होते। अब इनके यहाँ ये हो सकता है, इसमें कुछ दुख कुछ है नहीं, ये किसकी स्थिति है और कोई बात नहीं। मैंने कोई ज्ञान नहीं, मैं हूँ या नहीं कुछ, और वो जन्म जब जब कुछ है नहीं तो वो मरेगा क्या जन्मेगा। हाँ ये कुछ दृष्टि में आ रहा है, ये वही ब्रह्म में है वही आत्मा में। यदि उपदेश दिया तो लौट करके चले तो रास्ते में विचार किया, आत्मा को आनंदमय कहा, सुसुप्ति में आनंद तो है। अच्छा आनंद जब रहता है तो भोग करने वाला आनंद का होता है, आनंद को जो भोग करने वाला है वो आत्मा है ना, वो अजर अमर। तो इसमें तो देखते हैं कि कोई है ही नहीं, कोई सुख को भोग करने वाला है, आनंद का भोग करने वाला कोई है, उसमें मैं भी नहीं रहता, तो वो क्या जगत को जीतेगा और क्या, जब कोई है ही नहीं है तो किसको जीतना क्या जीतना, ये तो बात बहुत बड़ा है, ये तो कभी नहीं, जिसमें अपनी सत्ता तक नहीं हो जाती। इस बात देखते ही बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है। लेकिन लौट आए अभी भी तो आपने जो कहा ये बात पर हमने विचार किया, जो सुषुप्ति अवस्था में जो रहता है तो कोई ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूँ कि नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई चीज है या नहीं, आनंद नाम की कोई चीज है या नहीं, उसको भोग करने की तो बात बहुत ही है। अजर अमर कौन है, जब कोई है ही नहीं है तो अजर अमर कौन है, तो विजेता और पराजित वाला कौन रहेगा, तो ये तो बात है और कोई गहरी बात नहीं। अब तुम पच्चीस वर्ष के बाद देखो आत्मा वह है जो इस शरीर में है, आंखें देखती है कि आंखें नहीं देखती, वो देखता है, वो जिसके माध्यम से देखता है, आंखें माध्यम है देखने का, सांस ये शरीर दे रहा है शरीर नहीं ले रहा है, उसके रहते ही ये जो लेता है वही लेता है, विचार नहीं मन नहीं करता, वो जब तक है तब तक ये दिमाग में विचार आते हैं। वो आत्मा भगवान का अंश है नित्य शाश्वत, इस शरीर में जैसे दूध में घी है ऐसे एक जगह है, वो एक जगह किंतु सब जगह वो भगवान का नित्य है अजर है अमर है। उस आत्मा को जान लेगा तब शरीर का ज्ञान उसे पृथक हो जाएगा, नश्वर भाव को छोड़ करके वो आत्मा तत्व होकर के सच्चिदानंदमय अंश बन जाएगा, वो भगवान का सेवक है। अपने से तुम नहीं जान सकेगा, उपदेश से भी नहीं जान सकता। अब तुम हरिनाम करो, और चिंतन करो जो मेरे भगवान का बात, प्रार्थना मुझसे करो तुम हमको अब गुरु के रूप में ले लो। तब उस आत्मतत्व की चिंता करो। आत्मतत्व की चिंता करने से भी नहीं होगा कि मैं कौन हूं, रात के अंधकार में मैं गोरा हूं काला हूं यह दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए तुम सूर्य को देखने की चेष्टा करो, सूर्य का दर्शन होने पर अपने को भी दिखाई पड़ेगा, दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ भी दिखाई। इस तरह से भगवान की भक्ति करने से भगवान का दर्शन होने पर अपने आप मेरा भी मालूम हो जाएगा कौन हूँ, प्रभु का भी मालूम हो जाएगा, जगत के जीवों को भी मालूम हो जाएगा, संसार क्या ये सब कुछ मालूम हो जाएगा, और वही व्यक्ति अजर अमर ही क्योंकि वो आनंदमय भगवान है। कौन भगवान का है, भगवान का चिंतन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की कथाओं को सुनो। इस सबसे करते 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 ये सब चीजें दूर हो जाएंगी और तुम भगवान का दर्शन कर सकोगे। कुछ समय करते चले गए और चिंतन करते हुए
इस समय जो बच्चे सभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो मन जो शरीर को अपना मन है, जो हाथ में बुद्धि होने के कारण वो दुख किसको, मन के कारण
मन के कारण
अनुभूति किसको,
मन में ही वो कर। यदि मानो कि कोई और काम दे दिया जाए या कोई इंजेक्शन दे दिया जाए, शरीर में दर्द रहते हुए भी नहीं मानते, शरीर में दर्द है इंजेक्शन दे दिया सेंसलेस हो गई तो क्या दुख होगा। ऐसे ही कोई स्थिति में पहुंच गया जैसे कि लाल महाराज उनको होगा क्यों नहीं होगा, आत्म तत्व में स्थित है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनका पूर्व कर्म जो था वो सब जल गया, प्रारब्ध कर्म जल गया, इसलिए वो शरीर ही नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं होगा।
मतलब भजन करते करते ऐसी स्थिति आएगी,
आत्मा तत्व को जानी है ना, इसलिए अब मरेंगे, उनको रोग नहीं होगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म का उस पर अभाव नहीं किए पड़ेगा, इसलिए शोक भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा, वो एक रस में स्थिति
हमेशा दर्द होता है क्योंकि अभी हम देहात में बुद्धि में,
अभी देहात में बुद्धि में है, पूर्व जन्म के कर्म से ये शरीर मिला है, इसलिए उसमें उस कारण से इसमें रोग होते हैं, रोग होता है इस शरीर में और उसमें आत्मा उसमें देहात में लगा हुआ है, इसलिए
आत्मा को महसूस होता है
नहीं, मन को होता है, किंतु मन को होता है इसलिए कि आत्मा उसमें है, इसलिए आत्मा आरोप करता है कि मुझको ही हो रहा है
आत्मा, क्योंकि सजा तो इस जगत में आने की सजा तो आत्मा को ही मिली हुई है ना, क्योंकि उसने भगवान से उसको
यही महसूस नहीं होता, महसूस होता है इसलिए कि तदात्म बुद्धि है, ये मैं ही वो करी ये समय ये हो जाएगा,
मन से सम्मिलित आत्मा को महसूस होता है, निजी मतलब शुद्ध आत्मा को ये महसूस नहीं होता, मन से सम्मिलित आत्मा को।
जैसे मैंने मनु को एक आदमी कान पकड़ करके और उसको मारा,
किसी आदमी
गुंड पार्टी में किसी, तुमने देखा ये तुम्हारे भाई को मारा तो तुमको क्यों
तुमको
थप्पड़ लगा, तुमको अपमान किया उसने, तुमको क्यों लगा
अपना मारना है, इसलिए शरीर को आत्मा अपना मान
रही है। जब तुम्हारे ऊपर में कोई चोट नहीं आई, तुमको कोई अपमान भी नहीं किया और दूर खड़ा तुम्हारा भाई है उसको अपमान कर रहा है, तुमने जो ये मेरा जो लगा रखा है इसलिए उसको जितनी चोट पड़ रही है उससे अधिक तुमको चोट पड़ रही है ममता के वजह से। इसी तरह से वो आत्मा ने मन को और शरीर को ये मान रखा है,
आज हुआ
है
हाँ, ये स्वागत के जो कर्म है ये भक्ति से उसका एकदम दूर हो गया।
हाँ बिल्कुल एक्सर। हूँ, भटक जितना जो कुछ है सब।
तो भजन करते करते भी ऐसी चीज आएगी कि शरीर में रहते हुए भी शरीर के दुख दुख में
ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई आकर के हमको गाली दे, जिससे गाली हवा में उसकी मिल रही है, तुम्हारी माँ की हमारी माँ तो मर गई अब वो किसको लगेगा, कहे साला, कहे तो साला तो बहुत ये चीज है, क्या होगा उसका मुख थक जाएगा उसमें, और भी करेगा वो उसका रस्ता और जलेगा।
ये तो जवाब नहीं दे रहा, तो वो तो भाई कैसे
आपने लोग ऐसा है ना, तो लोग ऐसे होते हैं शरीर में कष्ट तो हो रहा है गाली सुन करके, किंतु ऊपर से मौन बने, ऐसा नहीं एकदम वो समझ रहा है कि उसे भाई मेरा शरीर नहीं है, उसे
ये साधन की भी तो सीरियस सहन करो, मैं सोच के भी अगर कोशिश कर रहा हूँ
तो भी ठीक है, किंतु उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मालूम ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं देखो। हमारी सबसे छोटी बेटी आई है, इसको भी प्रसाद साल ठाकुर जी को ये देना, ठीक है तुम हरिनाम करो,
इनका भी चाहते कि भक्ति लड़का मिले,
दीक्षा दीक्षा पिक्चर के लिए सब
दीक्षा के लिए भेजा
लोकनाथ महाराज के पास, नरोत्तम दास
वो लोगों ने कहा कि वही चल
जाओ, तो तुम्हारी बात को लेकर के कहीं कहते हैं महाराज जी कह रहे हैं बिना माप तो उसकी बात कर देगा।
इसमें महाराज वो क्या है चार समय
ये तो देखो बच्चों का बच्चों के प्रति कभी द्वेष नहीं होने चाहिए, कभी नहीं चाहे वो कनिष्ठ बच्चों भी हो तो मध्यम वाले उत्तम वाले भी उस पर द्वेष नहीं करें, अज्ञाता की वजह से है तो उस पर कृपा करें, ऐसा होना चाहिए। की जगह नहीं है कि जो वो चाहते हैं वही व्यक्ति यदि दूसरा कर रहा है तो उसको आनंद होता है, जो मध्यम अधिकारी का गुरु है मध्यम अधिकारी गुरु वो चाहता है जिससे इनको कृष्ण की तरफ, उत्तम अधिकारी जो चाहता है जिससे कृष्ण की तरफ, विवाद कह रहा है यदि कोई हमारे इस काम में सहायता करता है तो और प्रिय होने चाहिए ना, एक टीम है सबका लक्ष्य है कि अपोजिट में गोल किया जाए, तो उसमें विरोध का कहां है, और जब विरोध होता है क्यों गोल किया तुमने,
मुझे क्यों नहीं करने
मुझे करने जो होता है ना तुमने क्यों किया, तो इसका मतलब है दूसरे तरफ से घूस लेकर के ऐसा कर रहे हैं, क्या बात है।
इस मामले में वो बता रहे थे नवदीप की पत्नी सती, सती नाम है ना उनके, जगदीश महाराज की थे, उन्होंने कहा था वो आपके पास आती तो वो कह रहे थे जगदीश महाराज का ये उत्तर आया था,
जगदीश
महाराज अभी तो जुडिशियल बॉडी से किया था, कर रहे चार साल से ये लोग एक्सेप्ट नहीं
करते, हमारे पास
वो वैंकूवर काफी होते हैं, वैंकूवर हमारे यहाँ वृंदावन में तीन महीने
वो भक्ति हुई, उसमें कोई दूसरा उद्देश्य आ गया है तो ये कर्म होगा, हमारे रूप और सनातन जिन्हें रघुनाथ दास के शामिल यही तो सब गड़बड़ी करता है,
ये तो ठीक चलेगा मेरा वो मैंने इसलिए नहीं किया, अब कर रहा हूँ
किसी को कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति,
कहीं कर्म मिला मिला हुआ न हो, ज्ञान मिला हुआ न हो, योग मिला हुआ न हो। हमने वहाँ पर कर्म शब्द का प्रयोग किया है, कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि सभी से स्वरूप भक्ति का होना चाहिए। स्वरूप भक्ति का क्या है? श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण, ये तीन चीज प्रधान। और इसमें भी नाम प्रधान, पहले श्रवण और तब कीर्तन, और स्मरण उसके अनुसार में अपने आप होगा। इन चीजों तीनों या नौ के छोड़कर और जितने भी वो कर्म निष्ठा हो जाती है,
तीनों के
अलावा, तीनों के अलावा मैंने वो नवों के अलावा समझी,
नौ
मेरा भक्ति सभी कर्म में आ जाता है। इसकी प्रधानता तुलसी की आप सेवा कर रहे हैं, तुलसी की सेवा करने के लिए आपने ये देखा कि तुलसी की सेवा करते हैं, इसके लिए हमको ये जरूरी है कि जहाँ पर 50 लाख रुपया लेकर के सोने का मंच बनाए और तुलसी उसमें, ये भक्ति है कि नहीं है? भक्ति नहीं समझ में आया?
सोने का मंच बना के तुलसी का सेवा
करेंगे, सोने का मंदिर बनाएंगे, उसके स्टेप सब हीरे जवाहरात का लगा करके बनाएंगे, तो आपका सारा जीवन इसमें लग जाएगा, असल भक्ति और तुलसी सेवा रह जाएगी। इस चीज को समझो, इसलिए स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। कहाँ ऐसा शास्त्र में लिखा? तुम अपना एनर्जी दो इन नौ की तरफ में या तीनों की तरफ में, जिसको मैं कह रहा हूं, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति। और जब भी एनर्जी देगा तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर में कुछ प्रतिष्ठा की भावना है, कुछ और सब चीजें हैं इसमें भरी हुई है। सोने का मंच बनाएंगे तो विश्व में तो कोई है नहीं, तो कहीं बात सोने का मंच बना करके तुलसी की सेवा करता है, ये तो साधारण है। हमको तुलसी सेवा कर, तुलसी सेवा किस लिए कर रहा है भाई? किस लिए? तुलसी जी की कृपा हो तो शुद्ध संतों का संग मिले, और भगवान की कथा हमको सुनने के लिए तुलसी जी इसके लिए हमको कृपा। यदि मान ले कि आप कहेंगे हरि कथा हो, मैं तुलसी की सेवा में हूँ, हरि कथा जहाँ शुद्ध हो रही है या भगवान नाम का कृष्ण हम जहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर तुलसी सेवा को भी एकदम प्रधान बना दिया, भावना पावना भजन की चली गई, तो फिर क्या होगा? जो प्रक्रिया आपको 10 दिन में हो सकती थी उसको आपने 10 जन्म के लिए बढ़ाया, है ऐसा समझ में?
मुझे तो कुछ चीजें अपराध जैसा नहीं दिख रहा।
अपराध तो नहीं, मान लेते अपराध नहीं है।
नहीं, अगर सत्संग सुनना शुद्ध साधु
जो जानता है उसके लिए, उसके लिए जो जानता ही नहीं,
जो जानता है अगर वो करे तो उसके लिए तो अपराध हो जाएगा।
जी अपराध ठीक तो नहीं, किंतु हाँ कुछ गड़बड़ी हुई, अपराध नहीं कर।
हरे कृष्ण,
चलिए चला जाए, मैं तो फिर चली
जाए। हम लोग को दो प्रकार,
एक लौकिक एक परमात्मा। लौकिक सत्य मैंने जो जी जैसा है उसको ऐसा कहने का नाम, किंतु कभी कभी जो चीज जैसा है उसमें भ्रम हो जाता है, और जो चीज जैसा है वैसा कहना भी असत्य है। जैसे एक गाय भाग करके दौड़ रही थी, कसाई उसके पीछे दौड़ रहा है, यदि पकड़ लेगा तो उसे काट देगा। एक घर में घुस गई, घुसते ही तो घर वाले से उसने कसाई ने पूछा कि इधर एक गैया दौड़ती हुई आई, तो मैंने देखा झूठ है ना। और किसी ने कह दिया जिससे मैंने देखा ये अभी अभी उसको उसने पकड़ लिया, उसको काट दिया। तो ये जो कहा ये गैया यहाँ गई, ये झूठ है। जिसने कहा जिससे गैया इधर नहीं गई वो सत्य, किंतु किसी किसी के गले ये उतरेगा नहीं, किंतु है यही सत्य। जो चीज जैसा है वो वैसा देखने या कहने का नाम जो सत्य है, वो चीज का स्वरूपतः क्या चीज है, इस पर साधारण आदमी विचार नहीं कर सकता। कृष्ण ने मट्टी खाई, यशोदा मैया जी ने कहा जिसने मट्टी खाई, ये सब कह रहे हैं बलदेव इत्यादि सच कर रहे हैं, उसने मट्टी करने मैंने नहीं खाई, और तुमको विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, हमारा मुख देख लो। अच्छा तो मुख तुम ऐसा करो, बाहर करो। तो कृष्ण ने ऐसा किया तो उसके भीतर में उन्होंने झांका, तो झांका तो अखिल विश्व ब्रह्मांड उनके मुख में आया, मट्टी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। कहीं दिखाई पड़ी मट्टी कहीं? तो कृष्ण ने जो कहा था वो सच है। कृष्ण का मट्टी से अर्थात जड़ से कोई संबंध नहीं है, तो कृष्ण के लिए तो वो ठीक है। हमारे लिए यदि ऐसा हो तो हम तो जड़ बुद्धि वाले हैं, सच को भी झूठ देख लेंगे। इसलिए उनके सत्य में उस सत्य में अंतर है, क्योंकि तो हमको परम सत्य कहते हैं, परम सत्यम वो परम सत्य कृष्ण ही। जो युधिष्ठिर जी हैं उनके सत्य को समझा नहीं तो झूठ माना। कृष्ण ने दिखला दिया ये नहीं, हमारा कहना सत्य है, तुम्हारा समझना भूल है। इसलिए सर्वत्र ही कृष्ण ही परम सत्य हैं, और किसी सत्य सभी मनुष्य अपने पथ पर चल रहे हैं, और वो जैसे तैसे चल